दीदी मातम क्यों मना रही हो? बस लड़के से बात ही तो चलाई है, कौन सा आज ही आपको ब्याह कर विदा कर रहे हैं? फिर शादी तो करनी ही है ना, अगर अच्छा लड़का मिलता है तो अभी शादी करने में हर्ज ही क्या है? राधिका की तीनों बहनें उसे घेर कर बैठी थी। एक बार अपने कमरे में घुसी थी, उसके बाद राधिका ने कमरे से बाहर कदम नहीं निकाला था। दरवाज़ा भी तीनों ने बड़ी मुश्किल से खुलवाया था। रो रो कर राधिका ने अपनी आँखें सुजा ली थीं। अपनी बहन की बात सुनकर उसने आंसुओं से भीगी सुर्ख निगाहें उसकी ओर घुमाई और मायूसी भरे स्वर में बोली, शादी करनी है, सबको ये करनी होती है। नहीं चाहूंगी तब भी मुझे भी करनी ही पड़ेगी, जानती हूँ। चाहूँ या ना चाहूँ पर एक ना एक दिन इस घर और तुम सबसे दूर जाना ही होगा। पर अभी नहीं करनी है, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने अगर अभी शादी कर ली तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं पापा का सहारा हूँ, अगर मैं इस घर से चली गई तो सारी जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी, वो कैसे संभालेंगे सब कुछ? तुम सबकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब अटक जाएगा। मैं अपने बारे में सोचने से पहले बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तुम सबको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती हूँ, मम्मी पापा का सहारा बनकर उनका बोझ हल्का करना चाहती हूँ, उनके लिए इतनी सेविंग्स करना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद भी वो अपनी बची हुई ज़िंदगी बिना किसी परेशानी के बिता सकें। कितना कुछ सोचा था मैंने, पर अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। अगर अभी शादी हो गई तो पापा कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मैं चली जाऊंगी तो कौन संभालेगा इस परिवार को? और अगर मुझे ऐसा पति या ससुराल मिल गया जो मुझे इस परिवार के लिए कुछ ना करने दे, तब मैं क्या करूंगी? मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। सबसे बड़ी औलाद थी वो अपने माँ बाप की, बचपन से उनकी बेटी नहीं बेटा बनकर जीती आई थी। अपने माँ बाप और बहनों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, इस परिवार को संभालना चाहती थी, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी। जब से अक्ल आई थी तब से यही तो सपना देखा था उसकी आंखों ने कि अपने पैरों पर खड़ी होगी, इस काबिल बनेगी कि अपने माता पिता को हर चिंता से मुक्त कर देगी, सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लेगी, अपनी बहनों को एक बेहतर भविष्य देगी। पर उसके उन सभी सपनों पर शादी नाम का ग्रहण लगने वाला था जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। किसी तरह दो दिन निकल गए थे, राधिका की बहनें भी किसी तरह थोड़ा बहुत उसे खिला देती थीं। पहले कॉलेज, फिर ट्यूशन पढ़ाना, उसके बाद वक्त बचता तो अपने कमरे में बंद हो जाती। उदास सी रहने लगी थी वो और किसी की भी बात समझने को तैयार नहीं थी, और ना ही कोई उसकी मनोस्थिति समझ रहा था। अर्चना जी और आशुतोष जी ने आखिरकार उसे किसी तरह समझा बुझाकर अपनी इमोशनल बातों में फंसा ही लिया। हालांकि अब भी उसका दिल नहीं मान रहा था, वो शादी के लिए तैयार नहीं थी, पर उनका विरोध ना कर सकी। इस दौरान आशुतोष जी लड़के को देख आए थे और उनकी खूब तारीफ भी की थी। यहाँ से हाँ हो चुकी थी और अब लड़के वाले राधिका को देखने आने वाले थे। रात का वक्त था, अगले दिन लड़के वाले आने वाले थे, और इस वक्त राधिका के मन को अजीब सी बेचैनी ने घेरा हुआ था, घबराहट सी हो रही थी उसे। तो उठकर अपने कमरे की बालकनी में चली आई। मन अब भी इन सब के लिए तैयार नहीं था, उस पर सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि वो खुद कुछ समझ नहीं पा रही थी और ना ही अपने दिल को समझा पा रही थी। आगे क्या होगा ये भी नहीं जानती थी, बस ऐसी फीलिंग्स आ रही थीं कि कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है। रात के गहरे अंधेरे के बीच बालकनी में अकेली खड़ी राधिका अपने भविष्य की चिंता में डूबी हुई थी, जब अर्पिता मेंढक जैसे फुदकते हुए उसके पास चली आई। दीदी आपने अभी तक लड़के की तस्वीर नहीं देखी ना, मैं आपके लिए तस्वीर लेकर आई हूँ, देखेंगी आप? अर्पिता की आवाज़ राधिका के कानों से टकराई और वो अपने ख्यालों से बाहर आई। एक नज़र अर्पिता को देखा जो उत्सुकता भरी निगाहों से उसे देख रही थी, खुशी से खिले चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बिखरी हुई थी। सबसे छोटी थी वो, किसी बात की कोई चिंता फिक्री नहीं थी, शायद इसीलिए इतना खुश थी। पल भर को राधिका उसके चेहरे को तकती रही, फिर निगाहें फेरते हुए बिना किसी भाव के इनकार में कर दिया, नहीं मुझे नहीं देखनी किसी की भी तस्वीर। राधिका का ये जवाब सुनकर अर्पिता के मुस्कुराते लब सिमट गए। दीदी कब तक ऐसे उदास रहेंगी? आप ही तो कहती हैं कि जब कोई बात हमारे हाथ में ना हो तो उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वो जो भी करते हैं हमारे लिए उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा होता है, तो अब आप भी भगवान जी पर विश्वास करिए, वो आपके लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तुम अभी बहुत छोटी हो अप्पू, तुम मेरी स्थिति नहीं समझोगी, राधिका ने बस इतना ही कहा। उसके अल्फाजों में घुली बेबसी, उदासी और निराशा को महसूस करते हुए कुछ पल वो मायूस सी राधिका का चेहरा तकती रही, फिर राधिका की बाँह पकड़ते हुए गंभीर स्वर में बोली, अच्छा ठीक है नहीं समझूंगी, पर आप तो मेरी बात समझिए, ऐसे उदास रहने से, सबसे नाराज होकर खुद को इस कमरे में बंद करने से कुछ नहीं बदलने वाला, इसलिए जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए तो सही कितना हैंडसम और स्मार्ट लड़का है, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी,
इनका नाम भी माधव है और आपका राधिका। क्या पता भगवान ने इन्हें आपके लिए और आपको इनके लिए ही बनाया हो। अर्पिता ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी तस्वीर उसके सामने कर दी और लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए बड़ी ही उम्मीद से उसे देखने लगी। तस्वीर सामने थी पर राधिका ने उस पर एक नज़र तक न डाली और आंखें चढ़ाए नाराजगी से उसे घूरते हुए सवाल किया, किसने तुम्हें ये बातें सिखाकर भेजी है?
किसी ने भी नहीं, मैंने तो अपने मन से कही है।
अर्पिता ने सक पकाते हुए सर हिलाया, पर राधिका उसकी बड़ी बहन थी और पलक झपकते ही उसके झूठ को पकड़ चुकी थी।
अप्पू झूठ मत बोलो,
आवाज में जरा सख्ती लाते हुए राधिका ने उस पर दबाव बनाया और अप्पू ने अपने बचाव में मासूम सी सूरत बना ली।
मम्मी ने कहा है कि आपका मूड ठीक कर दूं, आपको लड़के की तस्वीर दिखा दूं और आपको बता दूं कि कल लड़का भी आएगा आपको देखने, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा और अगर आप राजी होंगी तभी बात आगे बढ़ेगी।
इसके बाद वो पल भर ठहरी, फिर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोली,
आप तो तस्वीर देख लीजिए, लड़का सच में बहुत हैंडसम है, बिल्कुल शाहरुख खान जैसे।
अच्छा तो एक काम करो, तुम ही देखो और तुम ही शादी कर लो अपने शाहरुख खान से।
राधिका ने तुनकते हुए उसे फटकार लगाई। बेचारी अप्पू का मुंह लटक कर इतना सा हो गया, उसने मुंह बिचकाया और किसी रूठे बच्चे जैसे तस्वीर को पास में रखी मशीन पर पटक दी।
देखनी है देखिए वरना भाड़ में जाइए, मैं तो कह दूंगी कि मैंने आपको तस्वीर दी थी और अगर अब तस्वीर उड़ी या आपने लड़का नहीं देखा तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं नहीं।
मुंह बनाते हुए वो वहां से चली गई। राधिका उसके बिगड़े हुए मिजाज देखती ही रह गई। फिर ठंडी हवा का एक झोंका उसे छूकर गुजरा। जहन में अर्पिता की कही बात गूंजी। तस्वीर का ख्याल मन में आते ही उसने हड़ालते हुए नजर मशीन की ओर घुमाई और उड़ने को फड़फड़ाती उस तस्वीर को झट से उठा लिया। कुछ पल उसकी बैकसाइड को सूनी निगाहों से घूरती रही, फिर मुंह ऐंठते हुए उसने तस्वीर को सीधा किया और जैसे ही नजर उस तस्वीर में दिख रहे शख्स पर पड़ी उसके होश उड़ गए। आंखें आश्चर्य से फैल गईं और मुंह हैरानी से खुल गया।